निर्गुण के गुण। तो आखिरकार बरसों से लिखी जा रही यह अकथ कहानी प्रेम की आपके सामने है। कबीर को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता, उन्हें पढ़ना होगा भक्ति संवेदना के समग्र संदर्भ में। ध्यान में रखने होंगे इस संवेदना के आत्मसंघर्ष और वाद विवाद, और साथ ही विवाद रस पक्षों के परस्पर संवाद, परस्पर समायोजन। त्यागना होगा इतिहास को बंद गली और अपने मनोवांछित लक्ष्य को उस बंद गली का आखिरी मकान समझने का मोह। यह किताब है कबीर के बारे में, लेकिन लिखी गई है भक्ति संवेदना के बारे में पूरे परिप्रेक्ष्य के साथ। किताब में कई बातें ऐसी हैं जिन पर किंचित विस्तार की अपेक्षा होगी। कुछ तो यही मिलेगा, कुछ के लिए प्रतीक्षा करें अगली किताब की। कबीर को पढ़ने के लिए उन्हें अजूबा बनाने के प्रलोभनों से मुक्त होना सबसे पहले जरूरी है। मध्यकाल में होते हुए भी कबीर अजीब बात है कि आधुनिक से लगते थे। निरक्षर होते हुए भी कबीर अजीब बात यह है कि ज्ञान जी कहे जाते थे। मुसलमान वंश में जन्म होने पर भी अजीब बात यह है कि रामानंद के शिष्य बनने, और इस तरह के अजब गजब मार्का बातों के आदि स्रोतों की खोज स्वयं ही रोचक और रोमांचक है। यह खोज की तभी जा सकती है जबकि आप देश भाषा स्रोतों पर कृपा करने की बजाय उनसे संवाद करें कि वंदंतियों की अवैज्ञानिकता सिद्ध करने के पराक्रम की बजाय उनका सांस्कृतिक सार और आशय समझने की कोशिश करें। मैंने यही कोशिश की। मैंने कबीर को चकित होकर पढ़ने या उनका मनमाना इस्तेमाल करने की नहीं, उन्हें ऐसे लगाव से पढ़ने की कोशिश की है जिसमें तरह के लिए विख्यात कवि से जिरह की भी कोई गुंजाइश है। कबीर को धर्मगुरु बनाने की बजाय उनके कवि व्यक्तित्व के साथ संवाद करने की कोशिश की है। इन सारी कोशिशों की असफलता और सफलता पर जब आपकी राय का इंतजार है। यह किताब कई ऐसी बातों का विस्तार करती है जो मैं सूत्र रूप में विचार का अनंत 2000 में कह चुका हूँ। यहाँ बातें सार रूप में विचार के अमूर्त अवतार में कही गई हैं। यहाँ ऐसे कई सूत्रों पर विचार किया गया है। यूरोपी आधुनिकता की अकेली आधुनिकता नहीं है। यूरोप और गैर यूरोप की समानता विलक्षणता को समझने की विधि क्या है। औपनिवेशिक आधुनिकता ने सारी गैर यूरोप में सांस्कृतिक संवेदना विच्छेद उत्पन्न किया। यह सब विचार का अनंत में कहा गया था। यह सब प्राण दिखाया गया है। ठीक 32 बरस पहले जब स्वर्गीय प्रोफेसर सावित्री चंद्र शोभा के कोर्स निर्गुण भक्ति असहमति और विरोध के लिए कबीर पर टर्म पेपर लिख रहा था, तभी तय कर लिया था कि रिसर्च कबीर पर ही करना है और नामवर जी के साथ ही करना है। रिसर्च तो यूं तो औपचारिक रूप में 1985 में संपन्न हो गया, और तभी से नामवर जी भी कहते रहे कि किताब छपवा दो, और मित्र अशोक महेश्वरी भी लगातार आग्रह करते रहे, अपने राम टालते रहे। अच्छा ही हुआ, हर बात का वक्त होता है। इस किताब का वक्त अभी ही आया। इस बीच वक्त ने भी बहुत उतार चढ़ाव दिखाए, कबीर की कविता ने भी और मैंने भी। उन दिनों क्या बहुत बात तक भी सोचा नहीं था कि कबीर पढ़ना पढ़ाना और कबीर का विधिवत अध्ययन करना एक सभ्यता मूलक जिज्ञासा में बदल जाएगा। कबीर को कैसे कैसे पढ़ा बल्कि गढ़ा गया है, इस पर ध्यान देना औपनिवेशिक ज्ञानकांड से टकराने में बदल जाएगा। यह जिज्ञासा यात्रा चलती रहती है, साथ ही चलती रही खुद को परखने बदलने की कोशिश, भीतर बाहर की निरंतरता की। साधक कबीर दोनों ही यात्राओं में साथी भी रहे और पथ प्रदर्शक भी। उन्हें उनके समय को समझने की कोशिश ने उनके समय के बारे में ही नहीं, मेरे अपने समय के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया। जो सीखा समझा जाना बूझा उसमें कुछ इस प्रकार की शक्ल में आपके सामने है। ब्राह्मण सर्वोच्चता की शाश्वता ऐतिहासिक सत्य नहीं, ब्राह्मण की फैंटेसी है। जैसे ऐतिहासिक सत्य का दर्जा औपनिवेशिक सत्ता के सहयोगी ब्राह्मणों ने दिया। रैदास अछूत थे, काफी विनम्र व्यक्तित्व था उनका, लेकिन एक पद 186 में भक्ति की महिमा और भगवान के प्रति कृतज्ञता जिन शब्दों में व्यक्त करते हैं वे ध्यान से पढ़े जाने चाहिए। जाके कुटुंब के ढेर सब ढोर ढोवत फिरही, अजहू बनारसी आसा पासा, आचार सहित विप्र करही, दंडौती तीन तनय रैदास दासानुदासा। आजकल कबीर रैदास और मीरा की हासिये की आवाज मानकर पढ़ा जाता है। इन संतों से जो समुदाय प्रत्यक्ष रूप में जुड़ते हैं उनकी वर्तमान दशा के लिहाज से ऐसी पढ़त ठीक लगती है, लेकिन इतिहास के लिहाज से भी क्या ठीक है? सवाल यह है कि इतिहास लेखन में कबीर आदि को हंसी के लोग बनाया किसने? जिस समय का इतिहास लिखने के दावे किए जाते हैं उस समय तो कबीर व्यापारियों में सर्वाधिक मान्य हैं। समाज के अन्य शक्तिशाली लोगों में भी उनकी मान्यता है। रैदास की शिष्या मीरा थी या कोई और झाली रानी, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि अछूत की इतनी मान्यता थी कि कोई रानी उनकी शिष्या बनना चाहे और खुरापाती ब्राह्मण मुंह की खाएं। औपनिवेशिक आधुनिकता ने इतिहास के केंद्र में रखा दिल्ली यानी राजसत्ता को। उसकी भूमिका को इस तरह रिप्रेजेंट किया कि औपनिवेशिक सत्ता का केंद्र मोह भारतीय इतिहास का स्वाभाविक विकास मान लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ यह भारतीय समाज में तो राजसत्ता फालतू की सी चीज थी। सारी सत्ता जाति या गांव की पंचायत के साथ में ही इस पद्धतिगत उलटपांसी पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं समझी गई। जिस तरह हाशिए के लोग रचे गए उसी तरह औपनिवेशिक आधुनिकता द्वारा जड़ इतिहास विहीन मध्यकाल भारतीय इतिहास के उस कालखंड पर आरोपित किया गया जो आर्थिक सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से ठेठ आधुनिक गतिशीलता और वाद विवाद संवाद के जरिए परंपरा जनित आधुनिकता के विकास का काल था। भारत और अन्य गैर यूरोपीय समाजों की अपनी देशज आधुनिकता और उसमें औपनिवेशिक आधुनिकता द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को समझना अतीत वर्तमान और भविष्य का बोध प्राप्त करने के लिए तो जरूरी है ही, कम से कम मुझे तो यह नितांत निजी आत्मबोध प्राप्त करने के लिए भी जरूरी लगता है। आज जहां हम खड़े हैं उस 21वीं सदी में इतिहास को कैसे देखा गया? क्या ऐसी कोई इतिहास दृष्टि संभव है जो ऐतिहासिक कर्ताओं की स्वायत्तता का भी सम्मान करे और व्याख्याकर्ता की स्वायत्तता का भी, जो अपने पसंदीदा नायकों से केवल तादात्म्य का ही अनुभव न करे बल्कि अपरिहार्य अंतर का बोध भी बनाए रखे? इन जिज्ञासाओं ने भी यह अकत कहानी दिखलाई। मैं 32 वर्ष पहले ग्वालियर में से दिल्ली आया। ग्वालियर में हालत यह हो गई थी कि नक्शा उठाकर कोई और शहर देखिए। उलझन और बेचैनी के उन दिनों में सहारा मिला था माँ स्वर्गीय कमला देवी से, जो लिखना नहीं बस पढ़ना जानती थी। न जाने कितने और पाठकों की तरह प्रेमचंद्र से मेरा भी पहला परिचय माँ ने ही करवाया था। माँ के अलावा सहारा मिला था ग्वालियर भर के और मेरे भी कॉन्शियस कीपर श्रेष्ठ कवि प्रकाश दीक्षित, गंभीर और जीवन मित्र लक्ष्मी मिश्र और छठी क्लास में से अब तक के दोस्त चले आ रहे अजय शर्मा और बाद में ज्योत्सना भौजी से, सुचित्रा और राजेन श्रीवास्तव से। आज राजेन हमारे साथ नहीं है। दिल्ली पहुंचने के कुछ दिन बाद ही जीवन में सुमन का प्रवेश हुआ, जिसके प्रति कृतज्ञता का कोई भी अभिव्यक्ति मेरे लिए अधूरी ही है। इस अधूरेपन में ही जिंदगी का पूरापन है। दिल्ली में रहना ही असंभव हो जाता अगर स्वर्गीय सीपी केसरी और स्वर्गीय पार्वती केसरी जैसे सास ससुर न होते। वे दोनों बुद्धिजीवी नहीं, आदर्श इंसान और नागरिक थे। जेएनयू ने केवल डिग्री नहीं दी, सोचने समझने की दिशा भी दी। लैटिन में यूनिवर्सिटी को अल्टा मार्टर कहा जाता था। उदार पार जेएनयू मेरी यशोधा है। जब जेएनयू में हिंदी एमए में दाखिला हुआ, प्रकाश जी ने कहा था, एमए तो कहीं से भी हो जाता है, बड़ी बात यह है कि जेएनयू में तुम्हें नामवर सिंह से पढ़ने का अवसर मिलेगा। सचमुच यह बड़ी बात थी। कबीर की भक्ति की सामाजिक थी। नामवर जी के बारे में वे पढ़ाते नहीं, सिखाते थे। सीखना जारी रख सकूं यही कोशिश है। आकाश धर्मा गुरु नामवर जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का और तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता। साहित्य दोयम दर्जे के बेगार नहीं, प्राथमिक महत्व की गतिविधि। यह बात तरह तरह से सिखाने वाले, मुझे अपार स्नेह देने वाले नेमे जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। कबीर को मूलतः कवि की तरह पढ़ा जाए, यह आग्रह बरसों से करता आया हूँ। जीवन में कविता का क्या महत्व है यह समझ आया केदार जी की क्लासेस से बैठ के और श्री अशोक वाजपेयी के साथ चर्चाएं करके। कविता के प्रति उनका पैशन देख के कृतज्ञ हूँ इन श्रेष्ठ कवियों का। कृतज्ञ हूँ मैं किदवई और प्रोफेसर असलम परवेज का। जेएनयू के वे दिन जिनके कारण अब भी ये दिन से लगते हैं। आभारी हूँ उन मित्रों का, समीर, मदन, नीलांजन, जय, पुष्पा, अशोक, सबरी, अनस भाई, के एम शर्मा जी का। आभारी हूँ कबीर के कवित्व पर लगातार बल देने वाली लिंडा हेस का, जिनसे सोच विचार में बार बार सहायता मिली। डेविड लोरेंजन जितने गंभीर विद्वान थे उतने ही खरे मस्त इंसान भी। आभारी हूँ मानत कबीर पंथी सांड डेविड का, आभारी हूँ जॉन एस हॉली और पॉल कोर्ट राइट का। जब रिसर्च कर रहा था तब भी थी, अब भी है और रहेगी कमला के प्रति कृतज्ञता। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, उसके साथ ही शुरू हुआ सांप्रदायिक राजनीति के प्रतिरोध। इस बहाने एक तरफ भारतीय समाज की समस्याओं और दूसरी तरफ हिंसा के स्वभाव को समझने का सफर, कृतज्ञ हूँ दिलीप और जमाल की दुआई का। इस किताब के कुछ हिस्सों के पहले रूप 2002 में मैक्सिको में लिखे गए। मैक्सिको का एक ऐसा ही, यदि कभी आत्मकथा कथा लिखी तो उसके दो खंड होंगे, जेएनयू के पहले, जेएनयू के बाद, और जेएनयू के बाद वाले खंड के दो खंड होंगे, मैक्सिको के पहले एवं मैक्सिको के पश्चात। ऑक्टेवियो पॉज ने मैक्सिको को एकांत की भूल भुलैया कहा। इस भूल भुलैया में मुझे बुलाया डेविड लोरेंजो ने कोलमियो द मेहिको में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर। कॉलेलियो ने सुविधाएं दी, काम करने की आज़ादी दी। डेविड के साथ साथ सौरभ, ईशिता, उमा, शशि, दीमड़ी जैसे मित्रों का संग साथ मिला। ये जानते थे कि देर सवेर कबीर किताब लिख ही लूंगा और लिख ली तो इनकी राहत की कल्पना करके खुद भी खुश हूँ। उसी वर्ष 2000 में फ्रांसिस्का ओरिसिनी ने बुलाया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहैसियत विजिटिंग प्रोफेसर। कबीर पर काम अब तक मध्यकालीन इतिहास की समस्याओं पर काम कर रूप ले चला था। इस प्रसंग में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की और ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में काफ़ी कुछ मिला। इससे ज़्यादा मिला फ्रांसिस्का और पीटर के अपनापे और दोस्ती से। उनका आभार स्वर्गीय राज चंद्रावरकर, उन दिनों वहाँ साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक थे, इनकी यादें ही साथ रह गईं। यह किताब लिख ही रहा था कि सूफी काव्य के मर्मज्ञ विद्वान और बेहतरीन दोस्त आदित्य बहल के निधन का समाचार आया। क्या कर सकते हैं मौत के आगे। कबीर पंथ को जानने देखने का अवसर मिला और कबीर की उस छवि को भी, जिससे एकेडमिक अध्येता अमूमन अनजान ही रह जाते हैं, यह अवसर मिला आचार्य अभिलाष दास जी और विवेक दास जी की कृपा से। कबीर पंथी साधु नवलदास, अचलदास और धर्मेंद्र दास के साथ से, स्वर्गीय डॉक्टर सुखदेव सिंह के सहयोग से, मित्र श्रेष्ठ गायक प्रहलाद सिंह टिपानिया के अपनत्व से मैं आभारी हूँ। कबीर संबंधी काम बीच बीच में छपता रहा। प्रोफेसर निर्मला जैन, श्री प्रभात त्रिपाठी और श्री ललित कार्तिकेय ने बकायदा लिखकर और प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी, मदन सोनी ने बोलकर जो सवाल उठाए, जिस तरह से उस काम को सराहा, उससे जोश भी बढ़ा और जिम्मेदारी का एहसास भी। नेम ऑफ द रोज मेरा प्रिय उपन्यास है। इतना प्रिय कि किसी बैच के छात्रों के सामने पहले दो एक सप्ताह में ही उसका उल्लेख न हो जाए तो उनके सीनियर्स का ताज्जुब होने लगता था। अरे, अब तक नेम ऑफ द रोज की जिक्र नहीं सुना अग्रवाल जी की क्लास में। उपन्यास ज्ञान साधकों और पुस्तक प्रेमियों के संकटों के बारे में है, पुस्तकालय को बचाने की कोशिश और न बचा सकने की त्रासदी के बारे में है। जेएनयू लाइब्रेरी के आत्मा श्री लक्ष्मी नारायण मलिक साहब को देखता हूँ, इतने सालों से लगता रहा है लाइब्रेरी कल्चर अनंत बची रहेगी। आपको मनचीती किताब मिल जाए, मलिक साहब को सारी सीढ़ियाँ बार बार चढ़ने उतरने में कोई परेशानी नहीं। कौसाम्बी कलेक्शन कहाँ रखा है और महाभारत के पुणे और बड़ौदा संस्करण कहाँ, मलिक साहब को कैटलॉग नहीं देखना पड़ता। सलाम मलिक साहब को। धन्यवाद करता हूँ संघ लोक सेवा आयोग के पुस्तकालय का, जिसके कारण किताबों की कमी कभी महसूस नहीं हो पाई। विचित्र किंतु सत्य यही है कि पिछले कोई दो साल से स्टेट प्रशासनिक संस्थान का अंग रहते हुए एकेडमिक काम करने में दिक्कत का नहीं, प्रेरणा का ही एहसास होता रहा। याद आते हैं बाबूजी स्वर्गीय फूलचंद अग्रवाल, जो ये कामना लिए चले गए कि उनका बेटा चौधरी कलेक्टर बनेगा। बेटे ने कलेक्टर बनने पर तो कभी ध्यान नहीं दिया, हाँ कलेक्टर बनाने वाली मशीन का हिस्सा जरूर बन गया। यह देखकर मजा तो बाबूजी को भी आता होगा। आभारी हूँ धौलपुर हाउस के माहौल का, अपने वरिष्ठ निजी सचिव श्री बी एस धूमन और निजी सचिव श्री वी के गुप्ता का, सारी व्यस्तताओं के बावजूद माहौल ऐसा बनाए रखने के लिए कि अकत कहानी प्रेम की चलती रहे। आभार जिज्ञासा के नौजवानों का, जिनके कारण उत्साह बना रहता है, मनुष्य में आस्था बनी रहती है। धीरेंद्र, अभिषेक, अंजनी, सुधा, केशव, आनंद, ज्योति, रविंद्र और संजय का, अंजनी और धीरेंद्र ने तो इस किताब के प्रोडक्शन में भी बहुत सहयोग प्रदान किया। श्री अशोक महेश्वरी और श्री हरीश आनंद सचमुच मित्र रत्न और धैर्य भूषण हैं। मेरे बस में होता तो बकायदा उपाधि और प्रमाण पत्र दे देता। इतने कम समय में इतनी सुंदर सज्जा के साथ किताब तैयार कर देना कोरे प्रकाशक का नहीं, सच्चे दोस्तों का ही काम है। ऋत्विक रितंभरा के प्रति क्या लिखूं, आभार कृतज्ञता या अकथ कहानी का ही कोई एक शब्द या अपना और सुमन का गर्व। निर्गुण के गुण तो अनंत हैं, कहानी अकथ है, फिर भी कहने की कोशिश शायद आपको रुचे। नई दिल्ली, 14 अक्टूबर 2009, पुरुषोत्तम अग्रवाल।